नमस्कार भारत, 2 जनवरी सोमवार। शिवपाल यादव को सपा से निकाला गया, अखिलेश बनाए गए पार्टी प्रमुख। क्या क्या हो रहा है मुलायम यादव के दल में, दोनों में अब कौन मजबूत?
राजनीति में तो आज स्पष्ट जवाब मिल गया कि अखिलेश इज द अनक्राउंड किंग ऑफ समाजवादी पार्टी किंगडम।
सुनेंगे एक रिपोर्ट और विश्लेषण भी, साथ ही चलेंगे लखनऊ, जानेंगे कि अखबार क्या कह रहे हैं पूरे मामले पर, और सुनवाएंगे साल 2016 में खेल की दुनिया में क्या क्या रहा खास।
Carlos Brathwaite, remember the name, history for the West Indies.
What a match! सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रभात पांडे से। उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक जारी है। कल राम गोपाल यादव की तरफ से बुलाए गए समाजवादी पार्टी अधिवेशन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। इसकी प्रतिक्रिया में मुलायम सिंह यादव ने तीसरी बार राम गोपाल यादव को पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने इस पूरे अधिवेशन को ही पार्टी के संविधान के खिलाफ बता दिया। इसी अधिवेशन में अखिलेश की मौजूदगी में राम गोपाल यादव ने शिवपाल को यूपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया। इस्तांबुल के एक नाइट क्लब में गोलीबारी करने वाले हमलावर की तुर्की पुलिस जोर शोर से तलाश कर रही है। नए साल के जश्न के दौरान इस क्लब में इस शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 39 लोगों की जानें गई थीं। तुर्की मीडिया के मुताबिक मरने वालों में कई अरब नागरिक भी थे और कम से कम 5 लोग सऊदी अरब के थे। कुर्द चरमपंथी संगठन PKK ने हमले के पीछे अपना हाथ होने वाली खबरों से इनकार किया है। संयुक्त राष्ट्र, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत दुनिया भर के नेताओं ने हमले की निंदा की है। पोप फ्रांसिस ने भी आतंकवाद के खिलाफ लोगों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने वेटिकन सिटी में कहा,
पुर्त्रोपो ला वियोलेंसा ha colpito anche in questa notte।
नया साल नई उम्मीदें लाता है, लेकिन इस खुशी के मौके पर भी हिंसा और आतंकवाद जैसी चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। मैं घटना पर दुख प्रकट करता हूं और इस घड़ी में तुर्की के लोगों के साथ हूं। मैं घटना का शिकार हुए लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भगवान हमारा साथ दे, ऐसी उम्मीद करता हूं, ताकि दुनिया को हम इसकी काली छाया से बाहर निकाल सकें। ये थे पोप फ्रांसिस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका से निष्कासित रूस के 35 राजनयिक अमेरिका छोड़कर रूस के लिए रवाना हो गए हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इन्हें देश छोड़कर जाने का आदेश दिया था। अमेरिकी चुनाव में कथित रूसी हैकिंग के आरोप और उसमें इन राजनयिकों के कथित तौर पर शामिल होने के बाद ओबामा प्रशासन ने ये फैसला लिया था। रूसी मीडिया के मुताबिक इन राजनयिकों को वापस लाने के लिए रूस से एक विशेष विमान को रवाना किया गया था। जर्मनी पुलिस ने कोलोन शहर में नए साल के जश्न के दौरान कई अफ्रीकी मूल के मर्दों की कड़ी जांच के अपने फैसले का बचाव किया है। सोशल मीडिया पर पुलिस की इस कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी और लोगों ने इसे रंगभेद से प्रेरित हरकत करार दिया था, लेकिन कोलोन पुलिस ने कहा है कि पिछले साल नया साल मनाने के दौरान कई महिलाओं ने अपने साथ दुर्व्यवहार की शिकायत की थी और वैसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए ये कदम उठाया गया। कोलोन पुलिस प्रमुख युर्गन मटीस ने कहा कि जिन लोगों की जांच पड़ताल की गई उनमें कई लोग कुख्यात अपराधी भी हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा,
Wir haben eine Vielzahl von jungen Männern mit
हमने बड़ी संख्या में उत्तरी अफ्रीका के कई देशों से आए युवाओं की पहचान की। शहर भर में ऐसे 1000 से ज़्यादा नौजवान हैं। हमने उन पर कड़ी नज़र रखी और उनकी जांच पड़ताल की, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर उपद्रवी किस्म के लोग थे। हम पिछले साल जैसी कोई घटना नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा किया। ये थे कोलोन पुलिस प्रमुख युर्गन मटीस के शब्द। पिछले साल कई महिलाओं ने शिकायत की थी कि उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में अफ्रीकी शरणार्थियों के शामिल होने की बात सामने आई थी। सीरिया में काम कर रहे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सीरियाई सेनाओं ने एक बार फिर राजधानी दमिश्क के उत्तर पश्चिम में स्थित एक इलाके में बमबारी की है। ये इलाका विद्रोहियों के कब्जे में है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा। नमस्कार भारत, फैसल महमूद अली से स्वागत है आपका। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी में तकरार जारी है। महासचिव रामगोपाल यादव की ओर से कल लखनऊ में बुलाए गए राष्ट्रीय अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया गया और मुलायम सिंह यादव को संरक्षक की भूमिका दी गई। इसके कुछ देर बाद मुलायम सिंह यादव ने एक पत्र जारी कर इस सम्मेलन को असंवैधानिक बताया। ये घमासान किस मोड़ पर है, दूसरी पार्टियां इसे कैसे देख रही हैं, बता रहे हैं लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
समाजवादी पार्टी में विवाद का क्लाइमेक्स भले ही उसके दो भागों में बंटने के रूप में रहा हो, लेकिन विवाद का अंत अभी भी नहीं हुआ है। इस विवाद के चलते न सिर्फ आम लोगों के बल्कि मीडिया के ध्यान का केंद्र भी यही पार्टी और उसके लगातार बदल रहे फैसले बने हुए हैं। एक चर्चा ये भी हो रही है कि पार्टी में ये सब जानबूझकर हो रहा है ताकि लोगों का ध्यान इधर ही बना रहे और अखिलेश यादव को आगामी चुनाव में लोगों की हमदर्दी हासिल हो सके। वहीं विपक्षी दल इस विवाद को पार्टी का आंतरिक मामला बता रहे हैं, लेकिन इस विवाद के चलते प्रदेश की हो रही अनदेखी का आरोप भी सरकार पर मढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हृदय नारायण दीक्षित कहते हैं,
किसी भी पार्टी की अंतर्कलह पर भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं, ये उनके अंदर की बात है। समाजवादी पार्टी की अंतर्कलह से राज्य के विकास कार्यों का और प्रशासन तंत्र की विफलता, ऐसा पीछे लंबे समय से चल रहा है। कुल मिलाकर के जो सरकार है वो सभी मोर्चों पर विफल रही।
कांग्रेस प्रवक्ता द्विजेंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि यदि समाजवादी पार्टी ऐसा जानबूझकर कर रही है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है।
आज जनता ही नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियां नहीं और खासतौर से मीडिया जगत भी भ्रम की स्थिति में है। ये सच क्या है, ये पारिवारिक लड़ाई है, सत्ता संघर्ष है या एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर जानबूझ के किया जा रहा है, तो हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी इसमें पूरी तरह से चूक गई है। क्योंकि जनता ऐसे ड्रामों से और कोई सरकार जो ऐसे ड्रामेबाजी से नहीं चलती है। सरकार जो भी काम करती है जनता के हित के लिए करती है और जनता उसको बाकायदे वाच करती रहती है। जिस तरह से करीब दो महीने से समाजवादी पार्टी उठा पटक चल रही है, जो पारिवारिक कलह जो है संसदीय सतह पर आ गया है, ऐसा लगता है कि यह सरकार उत्तर प्रदेश जनता की न होकर सिर्फ सैसई और इटावा की सरकार बनकर के रह गई है।
बहरहाल समाजवादी पार्टी में उलटफेर लगातार जारी है। हालांकि फिर किसी बड़े धमाके की उम्मीद अब 5 तारीख को ही है, जिस दिन मुलायम सिंह ने राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है। लखनऊ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली है। चर्चाएं ऐसी भी थीं कि समाजवादी पार्टी के विवाद के चलते कहीं मोदी की रैली पर भी लोगों और मीडिया की निगाह न जाए, लेकिन शाम तक लोग ये चुटकी लेते हुए भी मिले कि समाजवादी पार्टी के विवाद में आए इस अल्प विराम ने बीजेपी वालों की धड़कनें जरूर कम की होंगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
क्या अखिलेश यादव की बगावत मुलायम सिंह यादव के युग का अंत है या फिर कभी इस तकरार में कुछ नए मोड़ आने बाकी हैं? हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय के सामने यही सवाल रखे।
वो लखनऊ का बड़ा पुराना स्लोगन है मुलायम जी के बारे में, जलवा जिसका कायम है उसका नाम मुलायम है। ये मुलायम जी पे सारा जीवन चरित्रार्थ होता रहा है। मुलायम जी के बारे में, उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में सैकड़ों किस्से मशहूर हैं। मुलायम जी चाहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर उनको उत्तर जाना है तो वो पहले मुड़ेंगे दक्षिण की ओर, पश्चिम जाना है तो पूरब की ओर मुड़ते हैं। और इतिहास गवाह है, आप ममता बनर्जी से पूछ लीजिए, चंद्रशेखर जी और विश्वनाथ प्रताप अब नहीं रहे, होते तो शायद इस प्रश्न का हमसे बेहतर जवाब देते। मुलायम जी को पहचानना बहुत मुश्किल है। मुलायम जी बुजुर्ग हैं, आज कमजोर भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन वो मूर्ख नहीं है। वो जानते हैं कि आने वाला युग उनके पुत्र अखिलेश का है। बहुत सी कारणों में बहुत सी मजबूरियां भी होती हैं, और जैसे अमर सिंह का उनके साथ का संघ, वो क्यों रहा? आपको याद होगा पिछली बार अमर सिंह उनके साथ नहीं थे 2012 में, तो उन्होंने इलेक्शन स्वीप किया। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको वो जानते थे और फिर भी अमर सिंह को छोड़ नहीं पा रहे थे, खास करके तब जबकि पुत्र के विद्रोह में जाने का सबसे बड़ा कारण यही बना, अमर सिंह का संघ साथ। लेकिन एक बात तो स्पष्ट आज दिखाई देता है कि आज जो हुआ वो होना ही था, और ऐसा बात नहीं है कि मुलायम सिंह को मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है, सब उनको मालूम था। आज जो लीगल रैंगल इस पे हो रहा है, इसकी संवैधानिकता पे, कि आज की मीटिंग कानूनी रूप से जायज है कि नहीं है, ये दूसरी बात है। हम राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति में तो आज स्पष्ट जवाब मिल गया कि अखिलेश इज द अनक्राउंड किंग ऑफ समाजवादी पार्टी किंगडम।
ये कदम ऐसा भी वो उठाएंगे, ऐसा कभी आपने सोचा था?
कबीर दास का पुराना श्लोक है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, कि मन मरी माया मरी मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। देखिए, ये सत्ता जो होता है इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता की तृष्णा एक युवा को भी होता है, एक बुजुर्ग को भी होता है, वो तो मुलायम सिंह को है। पुत्र को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, और मुख्यमंत्री बनाना आसान है, नेता बनाना बहुत मुश्किल है
जी।
नेता तो आग के मार्ग से ही बना जाता है, और नेता कोई बना नहीं सकता है, बनना पड़ता है। तो ये भी मौका मुलायम सिंह का ही दिया हुआ है।
ये थे अंबिकानंद सहाय, और कल की तरह आज भी हम चल रहे हैं अपने साथी नितिन श्रीवास्तव के पास लखनऊ, और जानेंगे कि अखबार क्या कह रहे हैं वहाँ। नितिन
जी, फैजल साहब, आज के अखबार जो है वो उसी तरह से है जैसे आज लखनऊ का मौसम है, कल से थोड़ा ज्यादा बेहतर है, साफ है, धुंध कम है, फॉग और कोहरा भी कम है। अखबार भी थोड़ा ज्यादा आज क्लियर है कल के बजाय। हिंदुस्तान टाइम्स ने बड़ी अच्छी सुर्खी दी है, कहती है यादव फैमिली फ्यूड, अखिलेश टेक्स कंट्रोल, अनसीट फादर मुलायम एसपी चीफ, यानी अखिलेश ने मुलायम सिंह की को अपनी कुर्सी से हटाकर खुद समाजवादी पार्टी चीफ बन गए हैं अब। दैनिक जागरण की जो हेडलाइन है, सबसे बड़ी खबर भी है, वो बहुत बोल्ड अक्षरों में लिखी है, सपा में तख्ता पलट, साफ साफ लिखता है अखबार, और कहता है अखिलेश अध्यक्ष। उसके बाद अखबार बताता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर पिता को संरक्षण तो बनाया, अब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी बनाए गए नरेश उत्तम। हालांकि अखबार पार्टी के इस अधिवेशन के बारे में बात करता है जो कल हुआ, और अब जो मुलायम सिंह ने 5 तारीख को आगे बुलाया है, लेकिन साथ ही अखबार कुछ सवालों के जवाब भी मांगता है, जिसमें पार्टी के जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर जो आपस में खींचतान अभी चलेगी उस पर खासी बात हुई है। कुछ ऐसा ही सुर्खी अमर उजाला की है। अमर उजाला लिखता है कि समाजवादी पार्टी का असली किंग कौन, अब चुनाव आयोग करेगा ये फैसला, क्योंकि दोनों ही दलों ने, जो दोनों ही दल अभी निकल कर आए हैं, उन्होंने इस बात को साफ जाहिर किया है कि वो लोग चुनाव आयोग जाएंगे, इस बात को अपने साइकिल जो पहचान है समाजवादी पार्टी का, और चुनाव चिन्ह भी है उसके कंट्रोल को लेकर। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसी खबर को ज्यादा तरजीह दी है, समाजवादी पार्टी क्राइसिस, अखबार लिखता है हु कंट्रोल्स साइकिल सिंबल, यानी कि साइकिल का जो चिन्ह कौन कंट्रोल कर रहा है, बॉल अब चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग के पाले में है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार कहता है। और अखबार पिछले 1969 में जो भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसका जब एक बार बंटवारा हुआ था कांग्रेस जे कांग्रेस ओ में, तो उस समय
का हवाला जिक्र करता है जी,
उसका जिक्र करते हुए बताता है कि कैसे समाजवादी पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो बहुत अहम रहेगा इसके फैसले में।
बहुत बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव। बीता हुआ साल यानी कि साल 2016 खेलों की दुनिया के लिए बहुत अहम था। बीते साल ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, क्रिकेट और दूसरे खेलों में कई यादगार रिकॉर्ड बने, कई खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा, तो कुछ खिलाड़ी विवादों में भी घिरे। खेल के मैदान, कोर्ट और ट्रैक पर क्या हुआ कुछ बीते साल में बता रहे हैं हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त।
साल 2016 बीत गया, और बीते साल सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई और लोढ़ा समिति का टकराव गूंजता रहा। कुश्ती में नरसिंह यादव क्यों और कैसे डोप का शिकार हुए, ये पहेली आज तक नहीं सुलझी। तो सुरेश कलमाडी और अभय चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाना भारतीय ओलंपिक संघ पर भारी पड़ा, और खेल मंत्रालय ने उसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। लेकिन इससे परे खेलों में बहुत कुछ ऐसा हुआ जहां भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से धूम मचाई। आज चर्चा उनकी कामयाबी पर। नमस्कार, मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े खेल मेले ओलंपिक से। रियो में जब 100 से ज्यादा भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेने के लिए पहुंचे, तो शायद ही किसी ने सोचा हो कि भारत को केवल 2 पदकों से संतोष करना होगा और ये पदक उन खिलाड़ियों के नाम होंगे जिन पर कोई भी दाव नहीं लगाता। लेकिन कारनामा हुआ और वो 2 पदक मिले महिला पहलवान साक्षी मलिक और महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को।
वैसे बैडमिंटन में सबसे अधिक उम्मीदें साइना नेहवाल से थी। पिछले लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने रियो ओलंपिक से पहले जिस अंदाज में दुनिया के धुरंधर खिलाड़ियों को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, उसके बाद उनके आलोचकों को भी यकीन हो चला था कि वो कम से कम कांस्य पदक तो जरूर जीतेंगी। लेकिन खराब फिटनेस के कारण उनकी चुनौती ग्रुप स्टेज में ही यूक्रेन की मारिना ओलितीना से 21-18, 21-19 से हार कर टूट गई। दूसरी तरफ पीवी सिंधु ने ग्रुप स्टेज में ही हंगरी और कनाडा की खिलाड़ी को मात देकर एलिमिनेशन राउंड में चीन ताइपे की ताई जू यिंग को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने चीन की वांग यान और सेमीफाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर फाइनल में जगह बनाई। लेकिन फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन ने कातिलाना खेल दिखाया और सिंधु कड़े संघर्ष के बाद 19-21, 21-12, 21-15 से हार गईं।
मेरा फर्स्ट ओलंपिक्स है तो आई डिडंट थिंक दैट आई वुड गेट अ मेडल, बट देन आई एम रियली वेरी सैटिस्फाइड विद सिल्वर एंड बहुत फॉट किया था, पर कैरोलिना भी बहुत अच्छा खेली एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट हर। एंड व्हेन इट कम्स टू द फाइनल्स, इट वाज लाइक एनीबॉडीज गेम, फर्स्ट ओलंपिक्स और मैंने मेडल जीती, तो इट इज अ डिफरेंट फीलिंग।
जबकि इससे पहले तमाम निराशा के बीच 58 किलो भार वर्ग में भारत की साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीतकर रियो में भारत का खाता खोला। वैसे तो साक्षी मलिक क्वार्टर फाइनल में ही रूस की वालेरिया कोबलोवा से 9-2 से हार चुकी थी, लेकिन कोबलोवा के फाइनल में पहुंचने से साक्षी को रैपचेज मुकाबले खेलने का अवसर मिल गया, जिसका लाभ उठाते हुए उन्होंने पहले तो मंगोलिया की पूर्व दोर्जिन उरखोन को 3-1 से मात दी और उसके बाद कांस्य पदक के मुकाबले में किर्गिस्तान की आइसुलू टिनिकोवा को 8-5 से हराया।
कहीं ना कहीं ये था कि अभी तक इंडिया ने मेडल की शुरुआत नहीं की है, तो मैंने ये करके दिखाया। रशिया वाली बहुत अच्छी प्लेयर है, तो मुझे 100% था ये फाइनल में जाएगी, मुझे मौका मिलेगा। लास्ट तक ये था कि लड़ना है, मेडल लेना है।
अब जिन्हें पदक मिले उनकी तारीफ भी हुई, लेकिन सुर्खियां और तालियां महिला जिमनास्ट दीपा कर्मकार ने भी बटोरी। हालांकि वो बेहद मामूली अंतर से चौथे स्थान पर रही। दीपा कर्मकार उत्तरी कोरिया, स्विट्जरलैंड, रूस, उज्बेकिस्तान, कनाडा और चीन की खिलाड़ियों के बीच अपना लोहा मनवाने में कामयाब रही।
मेरा सपना पूरा ही नहीं हुआ, मैं तो आई थी इधर शायद मेडल लेने, पर मैं वो फोर्थ में हो गई तो अलग बात है। मेरे सर ने बताया बेटा अपना अच्छा देने की कोशिश कर।
और उसके बाद रियो में ही पैरालंपिक खेलों का आयोजन हुआ। अपने बुलंद हौसलों के दम पर पैरालंपिक खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। सबसे पहले तो पुरुषों की हाई जंप T42 स्पर्धा में मरियप्पन थंगवेलू ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का तिरंगा रियो में फहराया।
All eyes on this event at the moment. Nothing else going on in the stadium except this high jump. It's over!
भारत की ये खुशी तब दोगुनी हो गई जब हाई जंप T42 स्पर्धा में ही भारत के तरुण सिंह भाटी ने भी कांस्य पदक अपने नाम किया।
इसके बाद भारत की दीपा मलिक ने महिलाओं की शॉट पुट F53 स्पर्धा में रजत पदक जीतकर एक नया इतिहास बनाया।
कोई भी खिलाड़ी तो उसकी हार्दिक इच्छा यही रहती है कि ओलंपिक खेले। कहीं ना कहीं दिल में बहुत ज्यादा चाह थी ओलंपियन या पैरालंपियन शब्द मेरे नाम के साथ जुड़े और जो खेलों का मुकुट है जिसे हम ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स कहते हैं वो भी हिस्सा बने मेरी इस जर्नी का, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए मैं ये मेडल जीत पाई।
और अंत में भारत को पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया ने स्वर्ण पदक दिलाया।
2004 में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मैंने गोल्ड मेडल लिया, अभी जो रियो में गोल्ड मेडल लिया, मानता हूँ मैं रियो वाला गोल्ड मेडल मेरा उससे भी बड़ा है, क्योंकि उस टाइम देवेंद्र सिर्फ 23 साल उम्र थी, आज देवेंद्र की 35 साल उम्र है और वो 23 साल वाले का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
इधर भारत में भी क्रिकेट की दुनिया के सबसे छोटे प्रारूप 2020 के ICC विश्व कप का आयोजन हुआ। मेजबान भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे चैंपियन बनने के लिए मैदान में उतरी, लेकिन फटाफट क्रिकेट का बादशाह बना वेस्ट इंडीज। यहां तक कि उसकी महिला टीम भी पीछे नहीं रही और चैंपियन बनी। वेस्ट इंडीज के सामने जीत के लिए 156 रनों का लक्ष्य था, जो उसने कार्लोस ब्रैथवेट के केवल 10 गेंदों पर बनाए गए नाबाद 34 रन की मदद से 19.4 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल किया।
Carlos Brathwaite! Brathwaite. Remember the name. History for the West Indies. What a match we've had here at Eden Gardens. 24 from 4 deliveries, and the West Indies win by 4 wickets in 2016. Marlon Samuels, take a bow as well.
इस विश्व कप में भारत का अभियान भी वेस्ट इंडीज ने ही सेमीफाइनल में समाप्त किया था। इससे पहले भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 4-1 से गवाई। भारत ने बस आखिरी मैच जीता, वो भी जीत के लिए 331 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए। रोहित शर्मा के 99 और मनीष पांडे के नाबाद 104 रन की मदद से भारत ने जीत का लक्ष्य केवल 2 गेंद बाकी रहते हासिल किया।
स्टाइल के साथ मैच को जिता दिया है मनीष पांडे ने, और यहां पे एक रिकॉर्ड भी बनाया। भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 300 से अधिक रन बना के मैच जीता है भारत ने, या किसी भी टीम ने।
धोनी ने इस जीत में भाग्य को माना, लेकिन अपनी व्यथा भी इन शब्दों में व्यक्त की।
थोड़ा लक आपको चाहिए होता है, स्पेशली जब आपको टेबल टर्न करते होते हैं। एक अच्छा विन है हमारे लिए, बाकी भी खेलने ही आए नो, ऐसा थोड़े कि मैं नीचे वहाँ बैटिंग करता हूँ तो मेरे पे वो टीका लगा हुआ है कि यार ये बैटिंग कर रहा है जीत गया मैच। इट डजंट हैपन लाइक दैट, यू नो। आपको अगर कोई अच्छा यॉर्कर डाल रहा है तो अच्छा यॉर्कर डाल रहा है, आप यॉर्कर को छक्का नहीं मार सकते।
इसके बाद भारत ने जिम्बाब्वे से उसी की जमीन पर एक दिवसीय श्रृंखला एक तरफा रूप से 3-0 से जीती, और इसके बाद भारत ने अपनी ही जमीन पर न्यूजीलैंड को 5 मैचों सीरीज में 3-2 से हराया। आखिरी मैच में शायद ही किसी को उम्मीद रही होगी कि भारत इतनी आसानी से जीतेगा। जीत के लिए 270 रनों की तलाश में पूरी न्यूजीलैंड की टीम केवल 79 रन पर ढेर हो गई। जीत के हीरो रहे अमित मिश्रा, जिन्होंने पूरे मैच में 5 विकेट झटके।
वेल अमित, मेनी कांग्रेचुलेशंस, क्या बात है, दिवाली क्रिसमस साथ में आ गया।
बिल्कुल आ गया, और इंडियन टीम के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से मैंने परफॉर्म किया। शुरू के 2 ओवर मैं थोड़ा सा टेंस था, बट एमएस भाई आए मेरे पास, उन्होंने अपना खुल के बॉल डाल और विकेट के लिए बॉल दे जैसे तू डालता है, और वो डालना जब स्टार्ट हुआ तो विकेट मिलने स्टार्ट हुए। तो मैं ये कहूंगा कि पूरी टीम का और एमएस भाई ने जो टिप्स दिया उससे विकेट मिले।
लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भारत की पो 12 रही। पहले तो विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने वेस्ट इंडीज को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से मात दी, और इसके बाद भारत ने अपनी ही जमीन पर न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में 3-0 से हराया। तीसरे टेस्ट मैच में तो विराट कोहली ने दोहरा शतक भी बनाया। भारत 321 रन के विशाल अंतर से जीता। इतना ही नहीं, इस जीत के साथ ही भारत टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 टीम भी बन गई और उसे टेस्ट गदा भी मिली।
Well, many congratulations. I'd like to ask the Indian team, invite the Indian team to come up here and share the mace with Virat Kohli.
Trust me, I've got a few Man of the Match awards, so have the boys, but when they hold this, I think it's going to be a really special thing. The last time when the team got the mace, I saw from home. Now I'm able to hold it as captain, so very proud moment.
और साल का अंत तो भारत ने और भी दमदार अंदाज में किया, और इंग्लैंड को भी अपने ही घर में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 4-0 से मात दी। आखिरी टेस्ट मैच में तो भारत ने इंग्लैंड को 1 पारी और 75 रन से हराया। करुण नायर ने 303 रनों की यादगार पारी खेली। विराट कोहली अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुद हैरान नजर आए।
राहुल हैं, करुण नायर हैं, ये लोग स्पेशली करुण नायर, आके 300 रन बनाना, मतलब उससे बड़ी स्टेटमेंट वो नहीं दे सकते थे अपने लिए। जितने यंगस्टर्स हैं इनको देख के कभी कभी हैरानी होती है कि मतलब इन्होंने पिक अप थिंग्स वेरी वेल।
आर अश्विन को भी पूरे साल किए गए दमदार प्रदर्शन का इनाम ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में मिला। उन्होंने इस साल 8 टेस्ट मैचों में 2 शतक की मदद से 336 रन बनाए और 48 विकेट झटके। उन्होंने 19 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 27 विकेट भी हासिल किए। आर अश्विन मानते हैं कि ये टीम का नया दौर है।
We've had a great transition ever since Mahendra Singh Dhoni hung his boots last year in Australia. We've had a transition, the captain has taken over, a young captain, and we actually fell on the right track, and we have a great bunch of boys now. I would also like to dedicate it to the entire team and to the support staff.
वहीं मुक्केबाजी के रिंग में भारत के विजेंद्र सिंह छाए रहे। बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता विजेंद्र सिंह ने पेशेवर मुक्केबाजी में तंजानिया के पूर्व विश्व चैंपियन फ्रांसिस चेका को तीसरे ही राउंड में नॉकआउट कर अपने WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट खिताब का बखूबी बचाव किया। आज विजेंद्र सिंह खुश हैं कि उनके पेशेवर मुक्केबाज बनने के फैसले को सबका समर्थन मिल रहा है।
After 1:56 of the third round, the referee calls a halt to the contest, meaning the winner in the blue corner Pacific Super Middleweight Champion, the Jinder Singh.
جب میں نے فیصلہ لیا تھا جو پرو باکسر بننے کا, اس ٹائم پہ بہت ساری کانٹروورسیز ہوئی تھی, نیوز میں بڑا برا برا آیا تھا, لیکن جب میں نے ٹائٹل جیتا تب ہر ایک بندہ کھڑا ہو گیا, میرے لیے تالیاں بجا رہا تھا, تو یس آئی واز ایموشنل دیٹ ٹائم. جی ہاں,
سال جاتے جاتے بھارتی جونیئر ہاکی ٹیم کو بھی تب خوشیاں دے گیا جب وہ دنیا کی 16 ٹیموں کے بیچ وشو چیمپئن بن کر ابری. لکھنؤ کے میجر دھیان چند اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پرشوں کے جونیئر وشو کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں بھارت نے یوروپ کی سرشریش ٹیموں میں سے ایک بیلجیم کو 2-1 سے مات دی. اور جب ٹیم وشو چیمپئن بنے تو پھر کپتان کی خوشی کا ٹھکانہ کیسے رہے. ہرجیت سنگھ بولے,
ویسے ہم کو اسی دن کے لیے انتظار تھا, 18 دسمبر کے لیے ہم بہت سالوں سے تیاری کر رہے ہیں. سب سے پہلے تھینک یو لکھنؤ.
اس سے پہلے بھارت کی سینئر ہاکی ٹیم نے اپنے اتہاس میں پہلی بار چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں جگہ بنائی, جہاں وہ آسٹریلیا سے پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 3-1 سے ہاری. لیکن اس نے ایشین پروش ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پاکستان کو 3-2 سے ہرا کر چیمپئن بننے کا حق حاصل کیا. بھارت کی مہیلا ٹیم نے بھی فائنل میں چین کو 2-1 سے ہرا کر ایشین مہیلا چیمپئنز ٹرافی اپنے نام کی. ٹینس میں بھارت کے لینڈر پیس نے مارٹینا ہنگس کے ساتھ مل کر کھیلتے ہوئے فرینچ اوپن میں مشرت یوگل کا خطاب جیت کر اپنا کریئر گرینڈ سلیم پورا کیا.
The mixed doubles with Leander Paes and Martina Hingis. These are the champions of the 2016 Roland Garros, the French Open.
سانیا مرزا نے بھی مارٹینا ہنگس کے ساتھ کھیلتے ہوئے آسٹریلین اوپن میں مہیلا یوگل ورگ کا خطاب جیتا. پی وی سندھو نے ملیشیا ماسٹرز اور چائنا اوپن جیتا. گولف میں ادیتی اشوک انڈین گولف ٹورنامنٹ جیت کر یوروپین ٹور کا خطاب جیتنے والی بھارت کی پہلی مہیلا گولفر بنی. اتنا ہی نہیں, پنکج اڈوانی نے چھوٹے پراروپ میں وشو بلیئرڈز خطاب جیت کر ان کی گنتی 16 کی. پچھلے سال بھارت نے احمد آباد میں آیوجت ہوئے کبڈی وشو کپ کو بھی جیتا. فائنل میں بھارت نے ایران کو 38-29 سے مات دی. اور پچھلے سال راجیو گاندھی کھیل رتن بنے بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو, مہیلا پہلوان ساکشی ملک, نشانے باز جیتو رائے اور مہیلا جمناسٹ دیپا کرمکار.
سشری دیپا کرماکر کو جمناسٹکس میں ان کی اتکرشٹ اپلبدھیوں کو مانیتا دیتے ہوئے ورش 2016 کے لیے راجیو گاندھی کھیل رتن پرسکار سے سمانت کیا جاتا ہے.
تو یہ تھا سال 2016 میں بھارتی کھلاڑیوں کے کھیل کا لیکھا جوکھا. اور کچھ چھوٹ بھی گیا ہو تو اس کے لیے شبا کرے. اب دیکھنا ہے کہ اس سال بھارتی کھلاڑی اپنی کامیابی کا پرچم کہاں تک پھہراتے ہیں.
کارکرم کے انت میں ایک بار پھر سے سنتے ہیں وشو سماچار.
بی بی سی سماچار. اتر پردیش کے مکھیہ منتری اکھلیش یادو کو سماجوادی پارٹی کا راشٹریہ ادھیکش گھوشت کر دیا گیا ہے. یہ اعلان رام گوپال یادو کی طرف سے بلائے گئے پارٹی کے ادھیویشن میں کیا گیا. سماجوادی پارٹی کے پورو ادھیکش ملائم سنگھ یادو نے اس راشٹریہ ادھیویشن کو اسموادھانک قرار دیا. استنبول کے ایک نائٹ کلب میں گولی باری کرنے والے حملہور کی ترکی پولیس زور شور سے تلاش کر رہی ہے. نئے سال کے جشن کے دوران اس حملہور نے اندھا دھند فائرنگ کی تھی جس میں 39 لوگوں کی جان گئی تھی. سیریا میں کام کر رہے مانوادھیکار کارکرتاؤں نے کہا ہے کہ سیریائی سیناؤں نے ایک بار پھر راجدھانی دمشق کے پاس کے علاقے میں بمباری کی ہے. میکسیکو کے آکا پلکو میں نئے سال کے جشن کے دوران 5 لوگوں کی ہتیا کر دی گئی. بی بی سی سماچار.
تکنیکی پر سنبھالا تھا دیوشیش کمار نے. دن بھر تازہ سماچاروں, تصویروں اور وشلیشنوں کے لیے نظر بنائے رکھیے بی بی سی ہندی .com پر. ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کیجیے. نمسکار.